ये आकाशवाणी दिल्ली है। आम आदमी पार्टी के तीन पार्षद भाजपा में शामिल। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्षदों को सदस्यता दिलाई। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू। और दिल्ली नगर निगम ने सार्वजनिक सड़क और स्थानों को बाधित करने वाले माल वाहनों के शुल्क दरों में परिवर्तन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। आम आदमी पार्टी के तीन पार्षद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इनमें एंड्रयूजगंज से पार्षद अनीता बसोया, हरिनगर से निखिल चपराना और आरकेपुरम के निगम पार्षद धर्मवीर शामिल हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सभी पार्षदों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने तीनों पार्षदों को पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया और कहा कि दिल्ली में जल्द ही ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री सचदेवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से देश लगातार प्रगति कर रहा है और अब दिल्ली की बारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और कोई काम नहीं किया। श्री सचदेवा ने कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली सरकार के सभी कथित घोटालों की जांच कराएगी, चाहे वे शराब घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो या राशन कार्ड घोटाला हो।
आप एक बात को समझ के चलिए कि दिल्ली सरकार के जितने भी पाप हैं, उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो, या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो, हर वो व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, एक एक पाई को वसूला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा संदेश है उन अपराधियों के लिए।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आज कहा कि पार्टी जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए रोड मैप तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों से सबक लेना और उनका अवलोकन करना पार्टी की प्राथमिकता रहेगी, ताकि आगामी चुनावों के लिए रणनीति तैयार हो सके। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज मीडिया से बात करते हुए श्री यादव ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस ने सबसे पहले शराब नीति में भ्रष्टाचार और मुख्यमंत्री के निवास सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड के निर्माण में नियमों की अवहेलना को उजागर किया था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अगर कुछ भी गलत नहीं किया तो वे जांच से क्यों डर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए आयकर विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यों की प्रवर समिति का गठन किया है। समिति के सभापति भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा होंगे। समिति अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस विधेयक को बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को मजबूत करना और उसमें सुधार लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में अपने हाल के संबोधन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की स्पष्ट तस्वीर पेश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बजट और आयकर विधेयक के बारे में संसद में वित्त मंत्री के भाषण को साझा किया। परीक्षा पे चर्चा 2025 की पांचवी कड़ी में विद्यार्थियों को मस्तिष्क के चमत्कार के बारे में बताया गया है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता सद्गुरु ने सीखने को मनोरंजक बनाने और संतुलित जीवंत मस्तिष्क विकसित करने के बारे में अंतर्दृष्टि साझा की। सद्गुरु ने परीक्षा में ध्यान बढ़ाने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए मजबूत सचेतनता तकनीक भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा के बारे में नहीं है। सद्गुरु ने विद्यार्थियों से अपनी बुद्धि को गतिशील रखने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता से ही नहीं बल्कि आंतरिक विकास से भी वास्तविक प्रगति आती है। उन्होंने कहा कि आत्म जागरूकता और सचेतनता के साथ युवा मस्तिष्क की स्पष्टता, लचीलापन और उद्देश्य की मजबूत भावना विकसित कर सकते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में आज शनिवार को अवकाश वाले दिन देश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस वर्ष मेले के साझेदार राज्य मध्य प्रदेश और ओडिशा हैं। मेले में मिस्र, इथियोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस सहित लगभग 42 देशों के 600 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा बिम्स्टेक देशों बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड सहित कई देश भी मेले में भाग ले रहे हैं। इस मेले का उद्देश्य हस्तशिल्प उत्पाद और हथकरघा को बढ़ावा देना है। सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा केंद्रीय पर्यटन, वस्त्र, संस्कृति और विदेश मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित इस मेले के लिए आगंतुक टिकट मेला स्थल पर निर्धारित काउंटरों तथा दिल्ली मेट्रो के ऐप दिल्ली सारथी 2.0 से खरीद सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर भी टिकट खरीदे जा सकते हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
इस वार्षिक मेले में पारंपरिक व्यंजनों को आगंतुक खूब पसंद कर रहे हैं। मेले में हस्तशिल्प के साथ हाथों से बुने वस्त्र, खिलौने और आभूषण लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए मेले में भाग ले रहे जम्मू और कश्मीर के हस्तशिल्प कलाकार पद्मश्री हाजी गुलाम रसूल खान ने कहा कि सूरजकुंड मेला एक ऐसा मंच है जहां हस्तशिल्प कारीगरों को अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है और इसको लोग काफी सराहना करते हैं।
मेला है, इस मेले में बहुत सारे स्टेटों से बल्कि बिरुन मुल्क से भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंट्रियों से आ गए हैं जो यहाँ अपने चीजों का नुमाइश करते हैं। के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से।
मेले में आ रहे लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में हरियाणा की शालिनी बताती हैं कि यह मेला भारतीय और विदेशी सामानों की खरीदारी का एक बेहतर मंच है।
हमारा हर साल ही यहाँ पर आना होता है, इस बार भी मेला बहुत अच्छा है। खासकर जो हैंडलूम की चीजें हैं वो बहुत अच्छी यहाँ पे मिल जाती हैं।
मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार तथा सांस्कृतिक समूह अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इसके अलावा शाम को मुख्य चौपाल में मंत्र मुग्ध कर देने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। रईसुद्दीन के साथ अनुपम मिश्र, प्रादेशिक समाचार दिल्ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सिक्स फ्लैग स्टाफ बंगले के निर्माण और नवीनीकरण में अनियमितता के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर इसी बंगले में रहते थे। आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। मीडिया से बातचीत में श्री गुप्ता ने कहा कि आयोग ने तथ्यों के आधार पर शिकायत का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि बंगले का वास्तविक क्षेत्रफल 2 एकड़ से भी कम था, लेकिन 7 लगे बंगलों और टाइप 5 के 8 फ्लैट को खाली कराकर इस बंगले में मिला दिया गया। इसके बाद इस बंगले का क्षेत्रफल बढ़कर लगभग 8 एकड़ हो गया। उन्होंने कहा कि ये पूरा ढांचा ही अवैध है।
जो शीश महल दिखाई दे रहा है खाली इतना नहीं है, वो उसके साथ वहाँ पर कई टावर बन रहे हैं जो अधूरे पड़े हैं, उन पर भी करोड़ों रुपए खर्च हुए। वो टावर जो बन रहे हैं नए, उनमें क्या होना था, क्या बनाया जा रहा था, उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। और इस पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने आदेश दिए हैं CPWD को। मैं CVC के इस कदम का स्वागत करता हूँ। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इस पर कॉग्निजेंस लिया है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर अमरीका से निर्वासित भारतीयों के विमान को अमृतसर में उतारे जाने के मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता RP सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अज्ञानता के कारण इस मुद्दे को उठाकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस विमान को अमृतसर में इसलिए उतारा जा रहा है क्योंकि अमरीका से आने वाली उड़ानों के लिए ये सबसे निकटवर्ती अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। श्री मान ने कल शाम अमृतसर में एक संवाददाता सम्मेलन में निर्वासितों को लाने वाले विमान को अमृतसर में उतारने के केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के निर्णय पर ये कहते हुए सवाल उठाया था कि देश में सैकड़ों अन्य हवाई अड्डों के होते हुए भी केवल अमृतसर को ही क्यों चुना गया। इस बीच हमारे संवाददाता ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि अमरीका से निर्वासित 100 से भी अधिक भारतीयों को लेकर एक और विशेष उड़ान आज रात अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगी। अमरीका से आने वाले तीसरे विमान के भी कल अमृतसर में उतरने की उम्मीद है, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय होंगे जिन्हें अमरीका में अवैध रूप से प्रवेश करने और वहां रहने के कारण निर्वासित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में केंद्र के एक दल ने कल चंडीगढ़ में किसानों की मांगों पर विचार विमर्श के लिए किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। दोनों पक्ष 22 फरवरी को अगले दौर की बात करने पर सहमत हुए। कल शाम बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री जोशी ने कहा कि बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। इस दौरान किसानों को उनके लिए उठाए गए नरेंद्र मोदी सरकार के कई कदमों के बारे में जानकारी दी गई। श्री जोशी ने कहा कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अगली बैठक में शामिल होंगे। सरकारी स्वामित्व वाले भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत बनाने और आमजन के लिए टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है। कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 17 वर्षों में पहली बार BSNL ने एक तिमाही में सर्वाधिक मुनाफा कमाया है। पिछले 10 वर्षों में देश में मछली उत्पादन दोगुना हो गया है। मत्स्य पालन मंत्रालय के अनुसार मछली उत्पादन 2013-14 में 95 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 184 लाख टन से अधिक हो गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 2703 करोड़ रुपए से अधिक की अब तक की सबसे अधिक कुल वार्षिक बजटीय सहायता का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इस परीक्षा में देश और विदेश में 42 लाख से अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है और इसके लिए 7842 केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षाएं एक ही सत्र में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। कक्षा 10वीं की परीक्षा 18 मार्च को और 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल को समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को अपना CBSE एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य है। CBSE के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के स्टेशनरी के सामान को पारदर्शी पाउच में रखना होगा। परीक्षा के दौरान विद्यार्थी एक पारदर्शी पानी की बोतल ले जा सकते हैं। विद्यार्थियों को अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए परीक्षा शुरू होने से 30 से 45 मिनट पहले पहुंचने की सलाह भी दी गई है। परीक्षा हॉल के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने विद्यार्थियों के लिए सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कई पहलों की शुरुआत की है। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि विद्यार्थियों को CBSE एडमिट कार्ड के माध्यम से मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा जांच में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं टिकट खरीदते समय भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सुपर्णा सेकिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान के वार्षिक उद्यान उत्सव में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस वर्ष उद्यान में पर्यटकों के बीच ट्यूलिप और 140 अन्य प्रजातियों के गुलाब के फूल आकर्षण का केंद्र हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 80 से ज्यादा विभिन्न प्रजातियों के फूल भी आगंतुकों को खूब पसंद आ रहे हैं।
30 मार्च तक खुले रहने वाले इस उद्यान में पर्यटक सप्ताह में मंगलवार से लेकर रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक भ्रमण कर सकते हैं। सोमवार को रखरखाव के कारण उद्यान बंद रहता है। उद्यान में पर्यटक गेट नंबर 35 से एंट्री कर सकते हैं। आगंतुक केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन तक के लिए मेट्रो ले सकते हैं, जहां से हर 30 मिनट के अंतराल पर उद्यान के लिए शटल बसें उपलब्ध हैं। पर्यटक मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, पर्स, हैंडबैग, पानी की बोतलें और शिशुओं के लिए दूध की बोतलें ले जा सकते हैं। अमृत उद्यान में घूमने के लिए बुकिंग और प्रवेश निशुल्क है। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से टिकट बुक की जा सकती है। रईसुद्दीन के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए पल्लवी परमार, दिल्ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने सार्वजनिक सड़क और स्थानों को बाधित करने वाले या अतिक्रमण करने वाले माल वाहनों के शुल्क की दरों में परिवर्तन किया है। नई दरें विभिन्न प्रतिष्ठानों पर लागू होंगी, जिनमें फेरी वाले, दुकानदार, परिवहन कंपनियां और वाहन शोरूम इत्यादि शामिल हैं। और दिल्ली में मौसम, आज धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भाजपा में शामिल। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए। और दिल्ली नगर निगम ने सार्वजनिक सड़क और स्थानों को बाधित करने वाले माल वाहनों की शुल्क दरों में परिवर्तन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।